One of the blessed things in our life is to seek to live in the will of God in all the days of our life.
और हमारे जीवन में एक धन्य और आशीषित चीज़ ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा में जीने की आशा रखें और उसमें जीने की लालसा करें.
We know Romans 12:2.
और रोमियो 12:2 में लिखा है.
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect.
इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो.
This Bible verse speaks about we can prove or we can know the will of God.
ये बाइबल का वचन जो हमें बताता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं.
And the God's will for us is good, it is acceptable, and it is perfect.
और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली भावती और सिद्ध है.
So God's will for us is not bad, it is good.
परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए कोई बुरी नहीं लेकिन अच्छी है.
So our heart should be established and secure in that truth.
और हमें इसको किस तरह से इसमें स्थापित होना और ढूंढना है इसको.
God's will concerning me is always good, unspeakably good.
और किसी भी तरह से मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर की योजना इच्छा जो है वो भली ही है.
And it is something which is acceptable to me.
और ये मेरे लिए भी ग्रहण योग्य है.
When I really find, when we initially we may not find, we may not like it, but when we realize that we would be so thankful. God, I'm so thankful. It's so much acceptable to me. This is what I was seeking for.
और शायद आरंभ के अंदर हमें शायद वो इच्छा पसंद ना आए, लेकिन जब हम उसको जान जाते हैं तब हम और भी धन्यवादी बन जाते हैं उस इच्छा के लिए.
God's will be acceptable to God and to us.
परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के लिए और हमारे लिए भी ग्रहण योग्य होती है.
We will not think that it is It's not acceptable to me. God's will is acceptable to us.
और ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के प्रति अच्छी नहीं है, मेरे जीवन के लिए आरामदायक नहीं, लेकिन ये भली और अच्छी बात है.
The most important thing is God will is perfect.
ये बहुत उत्तम बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो बहुत ही सिद्ध है.
Think about it. There is nothing beyond God's will.
और परमेश्वर की इच्छा के बाहर और कोई चीज नहीं है.
Each one of us, if we do and strive with the best of our availability, we cannot find something better, more suitable and acceptable to us than God's will.
और हमारी योग्यता और हमारी चीजों के बावजूद भी हम परमेश्वर की इच्छा से बेहतर चीज और कुछ भी इस दुनिया में प्राप्त नहीं कर सकते.
So I remember in my early Christian, there was a time when I wanted to have control of everything in my life in my hand.
और मेरे आरंभ के दिनों के अंदर मेरे मसीह जीवन के अंदर सारी चीजों के ऊपर मैं नियंत्रण रखना चाहता था.
Even though I had accepted Jesus Christ as my savior, I could not trust God for everything.
और यहां तक मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, लेकिन मैं पूरी तरह से उसको भरोसा नहीं कर पाता था.
I was not willing to just abandon myself into God's hands.
और मैं पूरी तरह से अपने आप को प्रभु पर त्याग नहीं पाता था.
A little bit control I wanted to be in my hand.
और मैं अपने हाथों में कुछ अपने जीवन का नियंत्रण रखना चाहता था.
And God in his love, and God is always will not try to grab that from us. He'll wait for us to learn.
और परमेश्वर कभी भी वो चीज हमारे जीवन से छीनना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम धीरज से उस बात को सीखे.
So over the years I learned that is best is hand over the entire control to him.
और इन पिछले सालों में मैंने सीखा कि पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप देना.
All my interests are secure in his hands.
और मेरे सारी जो इच्छा है वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है.
And in the best of my ability, I cannot find or discover anything better than that.
और मेरे खुद के उत्तम से उत्तम प्रयत्नों के द्वारा भी मैं ऐसी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं पा सकता.
So when you realize that there is a rust.
और जब मैं एहसास कर लेता हूं तब मुझमें एक विश्राम आता है.
एंड देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी.
और एक सुरक्षा की अनुभूति होती है.
एंड दिस थॉट ऑलवेज वाज इन माय हार्ट दैट आई शुड बी ऑलवेज सीकिंग टू बी इन द सेंटर ऑफ गॉड्स विल.
और ये विचार मेरे जीवन में हमेशा रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हमेशा बना रहूं.
नॉट जस्ट इन द पेरिफेरी बट आई वांट टू बी इन द सेंटर ऑफ गॉड्स विल.
परमेश्वर की इच्छा के आसपास चारों तरफ की दिशाओं में नहीं, लेकिन उसकी इच्छा के मध्य में बना रहूं.
दैट इज अ बेस्ट प्लेस टू बी.
और ये सबसे उत्तम चीज है उस बने रहने के लिए.
That is the safest place to be.
बहुत ही सुरक्षित स्थान ये है.
That is the most glorious place to be.
और ये बहुत ही महिमामय स्थान है.
Do we have that desire to be in the center of God's will?
क्या हमारे जीवन में इच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के मध्य और केंद्र में बने रहे?
और डू वी कंसिडर रेकन दैट दैट इज द बेस्ट फॉर अस?
और क्या हम इस चीज को महसूस करते कि उसकी योजना ही हमारे लिए सबसे उत्तम है?
और जस्ट इन द पेरिफेरी इज फाइन फॉर अस, द ग्रे एरिया, नेदर हियर नॉर देयर।
और यहां वहां ऐसा नहीं कि यहां वहां या बाहर की चीजें उसकी योजना की हमारे लिए काफी है?
समथिंग व्हिच नो ऑफन आई चेरिश इज द थॉट दैट गॉड एज अ लविंग फादर इज इंटरेस्टेड इन माय लाइफ।
और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता होने के नाते मेरे जीवन में एक रुचि रखता है।
एंड आई ऑलवेज फाइंड इंक्रीजिंगली फाइंड अगेन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एंड ग्रेटिट्यूड व्हेन आई रियलाइज दैट गॉड इज देयर होल्डिंग माय हैंड।
और जब मुझे एहसास होता है कि प्रभु मेरे हाथ को पकड़े हुए थामे हुए हैं, तो मुझे और भी भरोसा और भी सुरक्षित महसूस मैं करता हूं।
इन द प्लेसेस एंड एरियाज वेयर I don't get direction, I don't know what to do, I can trust him.
और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे मुझे कोई निर्देश नहीं मिलता, वहाँ मैं प्रभु पर भरोसा रख सकता हूँ।
He is interested in my life.
प्रभु मेरे जीवन में रुचि रखता है।
And through direction and help and chastisement and correction, he will seek to take me there.
और प्रभु दिशा दिखाने के द्वारा या मुझे अनुशासित करने के द्वारा उसकी योजना में उसकी इच्छा की ओर आगे बढ़ाता है।
We read that in Deuteronomy chapter 8 verse 5.
व्यवस्था विवरण 8 उसका पांचवा वचन।
The Lord God was disciplining you just as a man disciplines his son.
और जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है।
Just we know, just an earthly father is interested from his heart more than anyone, any human being on the earth, interested in the success and welfare of his son.
और जैसे दुनिया के पिता जो अपने बेटे के जीवन के अंदर उसकी सफलता के अंदर रुचि रखता है।
So in the same way, that's a good example we can see. God is disciplining us. We are required even correction, discipline, a little chastisement, direction in our life.
और उसी तरह से एक दुनिया के पिता के समान हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में रुचि रखता है और ताड़ना देने के द्वारा हमें आगे बढ़ाता है।
It's a wonderful thing. Are we embracing that? Are we willing to receive that?
और ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्या हम इस चीज को प्राप्त कर पाते हैं?
Or are we interested in chasing our own direction, our own interests and self-centered and we are overconfident in our own abilities?
और इसके बावजूद हम अपने आप के बारे में, खुद के स्वार्थ के बारे में, अपने प्रयत्नों के द्वारा अपनी योग्यता से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
In Psalm 138 verse
138 भजन संहिता में इसे लिखा
है। It's a verse which many many years before brought such security in my life.
और ये वचन के द्वारा कई सालों पहले मेरे जीवन में एक सुरक्षा मैंने महसूस की।
It reads like this, Psalm 138 verse 8. The Lord will accomplish that concerns me. In another words, version it reads that God will perfect that which concerns me.
और 138:8 में लिखा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा।
Do you believe that?
क्या आप विश्वास करते हैं?
God will take the initiative to perfect everything that is concerning me.
और जो भी हमारे जीवन की जरूरत और चिंता है, उन सारी बातों में प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा।
What a truth it is.
और कितना एक अद्भुत सत्य ये है।
And God will perfect everything that is concerning me.
और जो भी हमारी चिंता और के विषय है, उन सब के लिए प्रभु सब कुछ पूरा करेगा।
And again, that can bring such a confidence and rest in our lives.
और ये हमारे जीवन में एक भरोसे को और एक विश्राम को लेकर आता है।
We know this familiar scripture in Proverbs chapter 3, which says that trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding.
और हम लोग ये वचन को जानते, नीति वचन 3:5, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, परन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
And the end of that verse says that, and he will make your path straight.
और 6 वचन में लिखा है, वह तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करेगा।
God is interested in making our path straight.
प्रभु रुचि रखता है कि हमारे लिए एक सीधा सरल मार्ग तैयार करे।
So for that reason, it's a good reason for us to learn to not to lean on our own understanding, but in God.
इससे हम ये सीखे कि हम अपनी समझ का सहारा न ले, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखे।
I remember sometime back when I was struggling in certain areas, seeking direction from God, I don't know what to do.
और कुछ समय पहले की बात है, कुछ क्षेत्र थे जहां मैं संघर्ष कर रहा था, प्रभु की दिशा को मैं जानना चाहता था।
I was earnestly interested knowing God's will in the direction in that matter.
और उस बात के अंदर मैं परमेश्वर की इच्छा को देखना चाहता था।
And one early morning when I was walking in the house and praying.
एक सुबह जैसे मैं उठा और प्रार्थना कर रहा था,
दिस वर्ड्स डिसेंडेड इन माय हार्ट,
और ये वचन मेरे दिल में आया,
दैट इज आइसाया चैप्टर 9 वर्स 6
और यशाया 9 उसका 6 वचन.
One expression, one phrase that written is about Jesus. It is written, he is a wonderful counselor.
और यहाँ पे लिखा है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला हो.
Isaiah 9:6. He is a wonderful counselor.
अद्भुत सलाहकार वो है.
So that word through that Holy Spirit impressed in my heart when I was seeking for direction, counseling earnestly. I just want to know what is the right thing to do in that person. So this word came to me, flooded in my heart.
और जब मेरे दिशा में मैं निर्देश को ढूंढ रहा था, एक अगुवाई को ढूंढ रहा था, तब ये वचन ने मुझे एक अद्भुत दिशा को दिखाया.
So it's like God is telling me and giving that confidence, I am your wonderful counselor.
और प्रभु जैसे मुझे एक आश्वासन दे रहा है कि मैं तेरा एक अद्भुत सलाहकार हूँ.
It was coming to me like, you don't have to pay me a consultancy fee.
और ये आ रहा था इस तरह से कि तुझे कोई कंसल्टेंसी उसके बारे में कोई फीस देने की जरूरत नहीं.
You need to see a consultant for advice. No, we let to pay money.
और जब हम बाहर जाते हैं सलाह लेने के लिए हमें पैसे देना पड़ता है.
Here God our Father is waiting to give free perfect counsel for us.
और यहाँ हमारा परमेश्वर पिता हमें मुफ्त के अंदर वो सलाह देता है.
And he's a wonderful counselor.
और यहाँ पे लिखा है अद्भुत सलाहकार वो
And
है.
And he's freely available.
और ये पूरी तरह से मुफ्त में है.
And that gave such an amazing comfort to my mind. Still that is so living into my, even though I had that I heard that God's voice that day many years before.
और इस वचन को जब मैंने सुना, बहुत एक विश्राम मेरे जीवन में आया.
I understand the value of listening to God's counsel.
और परमेश्वर की सलाह का मूल्य मैंने, सुनने का मूल्य मैंने जाना.
And how eager he is to offer that help to me.
और परमेश्वर कितना आतुर है कि उसकी मदद को मुझे देने के लिए.
Without paying any money.
और कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं.
Are we interested to listen to the counsel of God?
क्या हम आज तैयार है परमेश्वर की सलाह को सुनने के लिए?
Do we realize that he is a wonderful counselor? There can be no human being upon the face of earth who can be a better counselor than God himself.
Kya hum is cheez ko jaan pate ki wahi parmeshwar ek sachcha salahkar duniya mein uske jaisa aur koi salahkar nahi uske saman.
And he is not a hesitant counselor. He is willing, eager to reveal his will to us.
Wo jaldbaazi se salah dilane wala nahi, lekin wo bahut hi aaturta se hamari sahayata karne ke liye taiyar hai.
So one more thing, an expression written in the same verses.
और उसी वचन में लिखा है,
द गवर्नमेंट इज ऑन हिज शोल्डर्स,
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी.
द गवर्नमेंट इज ऑन हिज शोल्डर्स, इट इज ऑन हिज शोल्डर्स,
और जो प्रभुता जो है वो उसके कांधों पर होगी.
मीनिंग ही इज इन चार्ज,
इसका मतलब वो सब पर नियंत्रण रखता है.
ऑल अथॉरिटी एंड पावर,
और हर अधिकार सामर्थ्य के वो ऊपर है.
There nothing happens without the pre-knowledge of God.
और उसकी आज्ञा और उसके नॉलेज के बिना और कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होता.
He is in control of everything around us.
हमारे चारों तरफ की सारी परिस्थितियों के ऊपर उसका नियंत्रण है.
Every situation, every events that is happening in our life, around our life, God is in control.
हर एक परिस्थितियां जो हमारे जीवन में बन रही है, परमेश्वर उस पर नियंत्रण रखे
हैं. Government is on his shoulder.
प्रभुता उसके कांधों पर है.
Not on the shoulders of any big so-called powerful any human beings, anybody.
और कोई भी सामर्थ्य सिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर प्रभुता नहीं, लेकिन परमेश्वर के कांधों पर वो है.
Government is on his shoulder.
प्रभुता उसके कांधों पर
so
है.
We can, trust him.
इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं.
We can live in the security of being under his wings.
और उसकी जो उसके उस सुरक्षा में हम जीवन जी सकते हैं.
There is a passage very often we many of brothers and sisters speak and quote in our church.
और कलीसिया के अंदर बहुत सारे भाई बहन इस वचन को दोहराते हैं.
That is Jeremiah chapter 29:11.
और यर्मिया 29:11.
Jeremiah 29:11.
Jeremiah 29 उसका 11 वचन.
For I know the plans that I have for you, he declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope.
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा.
When I read this and a moment when I meditated, actually literally my heart filled with gratitude and my eyes became wet.
और जब मैं इस वचन को ध्यान कर रहा था तो मेरा दिल बहुत धन्यवाद से भर गया और मेरी आंखों में आंसू थे.
When I realized that God has a plan for my life.
और जब मैंने सच में जान लिया कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए एक योजना रखता है.
It came as a new meaning to me.
और इससे एक नया अर्थ मेरे जीवन में आया।
My heavenly father has a plan about me.
मेरे स्वर्गीय पिता के पास मेरे जीवन के बारे में एक योजना है।
Know that I have a plan for you.
और यहाँ पे लिखा है कि तू जान ले कि मेरे तेरे जीवन के लिए मेरे पास एक योजना है।
This each one of us should know this. And God has a plan concerning each one of us.
और हम में से हर एक को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर की योजना हम सबों के जीवन के लिए है।
Do we believe that God has a plan for each one of us?
क्या हम विश्वास कर पाते कि परमेश्वर की योजना हम सबों के जीवन के लिए है?
How can it be?
और ये कैसे हो सकता है?
I remember when I was many years back in Bombay when I came to Bombay many years before.
बहुत साल पहले जब मैं मुंबई में आया,
when this thought came to me, in initial my thought, how can it be? There is 1 crore people in the city of Mumbai. How can God be interested in a person like me?
और ये विचार मेरे मन में आया कि इस शहर के अंदर 1 crore से ज्यादा लोग हैं और कैसे परमेश्वर मेरे जीवन के लिए एक योजना रख सकता है?
But this is true. God has a plan for each one of us.
लेकिन ये सत्य है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक योजना रखता है।
God has a plan for each one of you. All should be eager to know that, seeking to know that.
और अगर परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है तो हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए उस योजना को जानने के लिए।
There is no need for us to make our own plans. It's already there. It's already made.
और हमारे खुद की योजना बनाने की जरूरत नहीं, हमारे लिए किसी ने पहले से बना दिया है उस योजना को।
So only thing we need to do is understand God's plan for me.
हमें सिर्फ इतना करना है, उसकी योजना को समझना है।
And God continues to say that my plans for you is not for calamity.
और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी हानि के लिए वो योजना नहीं है।
Now there are people who think very negatively about God.
और कई बार कुछ लोग परमेश्वर के बारे में बड़े नकारात्मक विचारों को रखते हैं।
God is interested in bringing about calamity and accidents and etc. etc.
परमेश्वर सारे नकारात्मक बातें करते हैं, अकस्मात जो हम देखते हैं वो सारी चीजें करते हैं।
But God is saying, I am interested in your welfare. My plans for you is for your welfare, not for your calamity.
लेकिन वचन कहता है कि मेरी योजना हानि की नहीं पर कुशल की है।
And it is also give you a future and a hope.
और यहाँ पे ये लिखा है कि एक भविष्य और एक आशा देने के लिए वो योजनाएं हैं।
Think about it. God is interested to give us a future, each one of us.
और सोच के देखिए कि परमेश्वर हमें एक भविष्य देना चाहता है।
And He is interested to give us a hope.
और वो हमें एक आशा देना चाहता
है। Is our situation now thinking a kind of we think it is hopeless? I have no hope from here. Do you, anyone thinking like that?
अगर हमारे जीवन हमारे बीच में कोई सोचता होगा कि मेरे जीवन की परिस्थितियाँ आशा रहित है पूरी तरह से।
But our creator says that we have hope.
लेकिन हमारा बनाने वाला ये कहता है कि हमारे लिए एक आशा है।
In whichever pit we are, we have hope.
और किसी भी गड्ढे में हम गिरे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे लिए आशा है।
God can lift us up and place us in the place where he has expected us to be.
और परमेश्वर उस गड्ढे से हमें उठाकर वहां रख सकता है जहां उसने योजना हमारे लिए बनाई है।
There's an interesting passage in Acts chapter 17.
और प्रेरितों के काम 17 अध्याय में
17:26 He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries for their habitation.
उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है।
So at a particular season or time, God has appointed everything. He has kept determined our times and the boundaries of our habitation.
और परमेश्वर ने एक नियत समय ऋतु ठहराया हुआ है हमारे जीवन में और हमारी एक सीमाओं को उसने बांधा हुआ है।
If you think a little, the meaning is in simple way, God has determined in which country we had to live, which state we had to give, in which city we had to live, which street we had to live, which door number we had to live. God has appointed all this.
और सरल भाषा के अंदर परमेश्वर ने योजना को बनाया किस शहर में, किस गली में, किस घर में हमको रहना है, वो सब कुछ परमेश्वर ने तय किया है पहले से।
Is not a marvelous thing?
और क्या ये अद्भुत बात नहीं है?
Dear brothers and sisters, let us find security in God's plans for our life.
और भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर की योजना के अंदर एक सुरक्षा को महसूस करें।
And let us remember that he is silently working his plans फॉर अस इन हिज लव।
और इस चीज को हम स्मरण रखें कि वो बहुत ही शांत रीति से हमारे लिए उसके प्रेम में योजनाएं बना रहा है।
And he has set boundaries for us for a particular time।
और एक समय के तय उसने हमारे चारों ओर एक सीमा को बांध के रखा
है। He has decided a particular point of time where we should live।
और एक समय उसने तय किया है कि उस समय हमें कहां पर जीवन को जीना है।
In which house to live, in which town, in which city, everything he has decided।
और किस शहर के अंदर किस घर में हमें रहना है वो भी उसने तय करके रखा है।
It brings such a comfort and security to us।
और एक इतनी सुरक्षा और एक आराम को मेरे जीवन में लेकर आता है।
something I always come to my heart।
और ये हमेशा ये विचार मेरे मन में आता है।
We should be always seeking to know what is pleasing to the Lord।
हमें हर समय इस चीज को जानना है कि परमेश्वर को कौन सी बातें प्रसन्न करती है।
When we are in many things we are involved and many of the activity, do we have that heart to seek what is pleasing to the Lord?
और बहुत सारी कार्यों के अंदर जब हम लगे हुए होते हैं तब हम क्या सच में उसको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं?
Sometimes this used to ring in my heart, trying to learn what is pleasing to the Lord।
और ये हमेशा मेरे कानों में ये आवाज गूंजती कि हर चीजें मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करनी है।
That's actually a verse in Ephesians chapter 5:10।
और यही वचन इफिसियों 5:10 के अंदर जैसे लिखा है।
Trying to learn what is pleasing to the Lord।
और परमेश्वर को भला और भावता हुआ क्या है वो हम जान ले।
In every venture, in every effort, everything that we seek to do, in back of mind we try to see, is it pleasing to the Lord?
हर कार्य हर चीज जो हम करते हैं हम हमारे मन के अंदर इस चीज को सोचे कि क्या ये परमेश्वर के लिए प्रसन्न करने योग्य है।
Trying to learn what is pleasing to the Lord।
और इसको हम सीखे कि हम परमेश्वर को हर बात में प्रसन्न कर सके।
Do we have a heart to do things which is pleasing to the Lord?
क्या हमारे पास ऐसा हृदय है जो खोजता है परमेश्वर को हमेशा प्रसन्न करने के लिए?
And in Ephesians 5 only in the same chapter is written verse 17।
और इफिसियों 5:17 में लिखा है।
Do not be foolish but understand what the will of the Lord is।
इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
We can be so ungodly and so foolish chasing our own mirages and not trying to know what is the will of God।
और हम बहुत ही मूर्ख बन सकते हैं हम परमेश्वर की योजना न जानते हुए शायद।
But if you are wise we can try to understand what the will of the Lord is।
अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे।
Which is good, acceptable and perfect।
जो भली भांति और सिद्ध है।
And we can, dear brothers and sisters, I would really want to encourage each one of you, seek to live in the center of God's will in our life।
प्रिय भाइयों बहनों मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में जीवन जीना सीखे।
Every day our desire should be, Lord, I want to be in the center of your will।
प्रतिदिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मैं तेरे इच्छा के केंद्र में रहना चाहता हूं।
In the every effort that we make, let us seek, Lord, I want to be in the center of your will।
हर एक प्रयत्न हर कार्य जो हम करते हैं हम इस चीज को खोजे कि प्रभु मैं तेरे इच्छा के मध्य में रहना चाहता हूं।
And when you do in every plans we think about, let us desire, Lord, I want to be in the center of your will।
हर एक योजनाएं जब हम बनाते हैं इस चीज को हम ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की इच्छा के मध्य में पाया जाए।
That is best for us।
और वही हमारे लिए उत्तम है।
I just want to close from something which has refreshed me।
और कुछ अंत में एक वचन मैं बताना चाहूंगा।
Hebrews chapter 13।
इब्रानियों 13 अध्याय
verse 9। Hebrews chapter 13 verse 9। Do not be carried away by varied and strange teachings, for it is good for the heart to be strengthened by grace।
नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है।
It is good for our hearts to be established in the grace of God।
मन का अनुग्रह के द्वारा दृढ़ रहना भला है।
Is our hearts established in the grace of God?
क्या हमारे हृदय परमेश्वर के अनुग्रह में स्थापित है?
That is something we can seek and desire in our life।
और ये हमारे जीवन में एक इच्छा को हम रख सकते हैं।
Let my heart be not established in earthly temporary things, but let our hearts be established in the grace of God।
हम इस चीज की इच्छा ना रखें कि दुनिया की चीजों के अंदर मेरा मन स्थापित रहे लेकिन प्रभु की बातों के अंदर उसके अनुग्रह में हम दृढ़ रहे।
May God really open our eyes of understanding।
प्रभु हमारे समझ की आंखों को सच में खोल दे।
And know the love God has for us।
और ताकि हम जान सके प्रभु जो हमारे प्रति उस प्रेम को रखता है।
Let's allow him to take charge of our life।
और हम अनुमति दे परमेश्वर को हमारे जीवन का नियंत्रण लेने के लिए।
Just like a father would chastise his son and lead him in the right way.
जैसे एक पिता अपने बच्चे को ताड़ना देकर उसको सीधे मार्ग में अगुवाई करता है.
Let us embrace that possibility. Let God take charge of our life, lead us and take to the center of God's will for us.
उसी तरह से हम परमेश्वर को पूरी तरह से नियंत्रण देकर उसकी इच्छा के मध्य में रखने के लिए हम उसे अनुमति दें.
Thank God for what we heard.
प्रभु का धन्यवाद जो वचन हमने सुने.
There's one question that was coming to my heart, you know, like we come and attend, you know, like I won't say we, I said I come and attend Sunday meetings, Tuesday meetings, then a lot of verses are quoted, turn the pages, sometimes I mark certain messages and what ahead, you know.
और एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि बहुत सारी सभाओं के अंदर मेरे बारे में कि मैं रविवार को मंगलवार को अनेक सभाओं में जाता हूँ, बहुत सारे वचन को सुनता हूँ, बहुत सारे जो संदेश है उसको मैं लिखता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या?
मैं रियली यू नो राइटिंग दोस मैसेजेस और यू नो लाइक और अंडरलाइनिंग थिंग्स दैट दोस वर्ड्स दैट आई रिसीव फ्रॉम गॉड कैन वर्क इन माई लाइफ.
और जब उस वचन को मैं लिखता हूँ उसको अंडरलाइन करता हूँ, लेकिन क्या वो वचन जो मैंने सुना है मेरे जीवन में कार्य कर रहा है?
You know, the best test in our lives, you know, is when we get certain situations, very troubling situations, that is when we are exposed.
और ये सबसे परीक्षा हमारी तभी होती है लेकिन जब से जब बहुत ही बुरी परिस्थिति में हम फंसते हैं तभी हम अपने जीवन को देख पाते हैं उसमें.
When we really have hard and trying times, then we see how we are, you know.
और जब हम बहुत ही ऐसे तकलीफों से ऐसी सख्त परिस्थितियों से जाते हैं तभी हम अपने हृदय की अवस्था को जान पाते हैं.
दैट नो लाइक आई गो टू चर्च, आई रीड मैसेजेस, बट व्हेन आई सी माय लाइफ आई एम लाइक दिस.
और मैं कलीसिया में जाता हूँ, वचन को सुनता हूँ, लेकिन जब मेरे जीवन को देखता हूँ तो मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ.
लाइक व्हेन वी नो व्हेन जीसस टोल्ड पीपल हाउ टू प्रे. There's one verse in that it says, I'll go to Matthew chapter 6.
मत्ती 6 में जब लोगों ने यीशु से पूछा कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है.
Start with verse 9, it says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो.
So one thing is thing the foremost thing is let your will be done on earth as it is in heaven.
और बहुत ही जरूरी बात यहाँ पे जैसे लिखी है कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो.
When I pray that God as you want your will to be done, let it be done that way.
और ये प्रार्थना मैं करूँ कि प्रभु जैसे तू मेरी अपनी मर्जी मेरे जीवन में करना चाहते हैं वैसे ही तू मैं करूँ.
I really want to live a life that you will, not me.
और मैं ऐसे जीवन को जीना चाहता हूँ जहाँ पे तू हो मैं नहीं.
If you see about Jesus also, you go to Matthew. Matthew chapter 26.
मत्ती 26.
And it's about Jesus when he comes to the last the time he has to go, you know, he's going to put on the cross. He takes Peter and along with him, and he's Peter and two sons of Zebedee, and he goes to a place and he prays.
और यहाँ पे अंतिम जो यीशु का समय था जब वो पकड़वाए जाने से पहले जब यीशु अपने शिष्यों के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए जाता है.
And verse 39, he says, the later part says, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as thou wilt.
39 वचन में लिखा है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो.
Again, verse 42 says, My Father, if this cannot pass away unless I drink it, thy will be done.
42 वचन में, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो जाए.
So, thinking about it, no, like, one thing of Jesus, when you see about the life of Jesus, whatever he says, you know, like, what I speak, I learn from the Father. What I say, you know, I learn from the Father. And even when the last time he has to go, he says, if possible, take away, but no, let your will be done in my life.
और यीशु के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि यीशु जो कुछ भी बोलता और करता था वो सब कुछ उसने पिता से सुना था और सीखा था और अंत में भी वो यही कहता है कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए.
And when I say I want to be like Jesus, is my life like that?
और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ तो क्या मैं उस प्रकार बन पा रहा हूँ?
Like you know, like in certain situations when even if I'm right and somebody puts me down, and then even then that time I can say praise God, you know, it is not that person but it's you that has built that in my life.
और जब सच में जब मैं सच होता हूँ लेकिन कोई मुझे और झूठा या नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ तब अगर मैं प्रभु की स्तुति कर पाता हूँ तब मैं वो सही परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया इस प्रकार जान पाता हूँ.
If a certain area where I some lose some money in a way or something, you know, like, but still I said God thank you, it's gone but let your will be done in my life.
और जैसे मेरे पैसे कहीं खो जाते हैं या मैं उसका नुकसान हो जाता है तब भी मैं अगर कहता हूँ प्रभु धन्यवाद तेरा तेरी मर्जी पूरी हो जाए.
So now God wants me to live in a way like I be really pleasing to him.
परमेश्वर चाहता है कि सच में मैं ऐसा जीवन जीऊँ जो उसको प्रसन्न करता हो.
So as really you know, like one thing I was thinking like when you come to church it's not about coming and hearing, it is coming and seeing what my life is.
और कलीसिया में सिर्फ आकर सुनना यही नहीं लेकिन अपने खुद को जीवन को देखना कि मैं क्या हूँ.
And you know, like ask God to help, you know, to help Lord that I am a Lord, but really change my life as per your will.
और इस प्रकार परमेश्वर से मांगना कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे बदल.
It's not about, you know, like about, you know, like you can say about a father and a son.
एक पिता और पुत्र के बारे में जब हम सोचते हैं.
Like you know, the father has certain plans for his son, and the son has some confusion. He can go back to the father and really, you know, ask God, Father, like this is the thing. These are the troubles that I am. Can you really help me to, you know, change?
और जैसे एक पिता के पास अपने बच्चों के लिए एक योजना होती है और जब जब जो बच्चा है जो किसी कन्फ्यूजन में होता है वो अपने पिता के पास जाकर पूछ सकता है कि ये परिस्थिति में.
It is not a very complex thing. It's a simple thing. This is a problem and this is the thing. I need your help.
ये बहुत ही कोई मुश्किल बात नहीं लेकिन आसानी से वो पिता के पास जाकर पूछ सकता है.
बट वेन इट कम्स टू गॉड एंड वेन आई से ही इज माय फादर आई टेंड टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स.
और जब मैं कहता हूँ परमेश्वर पिता और मैं उसके पास जाता हूँ तो मैं चीज़ों को और कठिन बना देता हूँ.
आई थिंक इफ आई डू दिस देन माई फादर विल बी हैप्पी, इफ आई डू दैट देन माई फादर विल हैप्पी एंड देन थिंग्स विल गो बेटर विद मी.
और मैं सोचने लगता हूँ अगर मैं ये करूँगा वो करूँगा तब मेरा पिता प्रसन्न होगा और तब चीज़ें अच्छी होगी.
गॉड इज अ लविंग गॉड. ही सेज व्हाटएवर like we Abu was sharing, you know, that declares the Lord that he has plans for our welfare and not for calamity to give us a future and a hope.
और जो हमारा पिता है वो एक प्रेमी पिता है उसकी हर एक योजना और कल्पनाएं हमारी हानि की नहीं लेकिन एक उत्तम भविष्य और आशा देने के लिए.
That I have to have that simple faith, you know, like God really I trust you, I don't want to take things to my head but I really want to trust you and have faith in you that you will do the things perfect in my life.
और एक साधारण विश्वास है कि प्रभु मैं इस चीज़ों को अपने बुद्धि से नहीं करना चाहता लेकिन तुझ पर पूरा भरोसा रखना कि तू सब कुछ करेगा.
When I humble myself and go to God and say, God, these things.
और जब मैं नम्र होकर प्रभु के पास इन चीज़ों के लिए जाता हूँ.
There's one verse that always comes to my heart. It says Psalms 46:10 says, Be still and know I am God.
और एक वचन हमेशा तब मेरे मन में आता है भजन संहिता 46 में से कि चुप रहो शांत रहो और जान ले कि मैं ही यहोवा हूँ.
And then he starts working. When I humble myself, then he starts working and when he starts working the things are wonderful.
और जब मैं नम्र होता हूँ और जब मैं शांत होता हूँ तब परमेश्वर कार्य करता है और जब वो कार्य करने लगता है तो चीजें बहुत अद्भुत हो जाती है.
There's one more thing I had shared earlier also. See, I think I shared with the young people. It's about when we buy clothes, you know.
और इस बात को मैंने पहले भी बांटा था कि जब हम कपड़े खरीदते हैं
we go to the mall or shop or wherever it is
aur dukaan mein ya mall mein kahin hum jaate hain
we take a shirt or a trouser or the sisters might take a dress or a saree whatever first they go to the you know like they have this rooms where you can go and check the clothes they go inside put the things on and see if the fitting is perfect you know like the things are really suiting them and when you really like those things you know, you buy like, I'm going to buy this dress or this shirt or this trouser
और जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तभी वहाँ पर मॉल के अंदर ऐसे एक ट्रायल रूम होते हैं जहाँ पर वो चेक करते हैं क्या वो मुझ पर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है तब हम उसको खरीदते हैं.
सो सेम एज द वर्ड ऑफ गॉड, यू नो, लाइक वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड, वी रियली ट्राई इट इन आवर लाइफ एंड सी हाउ इट वर्क्स, यू नो, इन आवर लाइफ.
उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है कि उसको हमने जीवन में हमारे जीवन में परखा है और वो कैसे कार्य करता है.
आई नो लाइक एज यू कैरी व्हेन यू गो टू एनी प्लेस यू वेयर न्यू क्लोथ्स, यू नो, लाइक द सेम थिंग, यू नो, द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन यू हैव दैट वर्ड ऑफ गॉड ऑन अस, यू नो, वी आर न्यू इन लाइफ एंड व्हेन वी गो अहेड गॉड्स ग्लोरी इज सीन एट इट.
और जैसे हम उस कपड़ों को पहनते और बाहर जाते हैं वैसे ही परमेश्वर का वचन जो परखा हुआ हमारे जीवन से प्रभु को महिमा देता है और औरों को दिख पाता है.
इट इज सीन इन आवर लाइव्स, इट इज नॉट हिडन.
और परमेश्वर का वचन छिपा हुआ नहीं लेकिन वो दिखता है.
सो मे रियली गॉड हेल्प अस टू हैव दैट लाइफ, वी कैन रियली ट्रस्ट इन हिम, हैव फेथ इन हिम एंड कैन रियली से एज जीसस सेड, लाइक लॉर्ड एनी सिचुएशन एनीथिंग कैन हैपन बट लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ.
और हम ऐसे जीवन को खोजे कि प्रभु हर परिस्थिति में चाहे कैसा भी हो हम प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं.
गॉड हेल्प अस इन दैट.
प्रभु हमारी सहायता करें.
Praise God for the words God spoke to us.
और जो वचन हमने सुने उसके लिए धन्यवाद.
This is a very important, I feel like so important that we need the will of God to be done in our lives.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस चीज़ को जानना कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो.
Because at the end of the day, like when I meet Jesus, he is going to show me the plan that he had for my life.
और जब दिन के अंत में जब यीशु मसीह के पास जाऊंगा तब वो मुझे बताएगा कि उसके पास क्या क्या योजनाएं मेरे जीवन के बारे में थी.
एंड द एरियाज वेयर आई रिबेल्ड एंड आई सेड आई कैन डू व्हाट आई लाइक आई कैन डू बेटर देन गॉड एंड आई रिबेल्ड एंड डिड व्हाट आई वांटेड.
लेकिन कोई कोई क्षेत्र के अंदर मैंने बलवा किया और मैंने ये इच्छा की कि मैं परमेश्वर से भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ.
एंड दोज आर द पॉइंट्स वेयर आई विल बी फीलिंग वेरी लॉट ऑफ रिग्रेट एंड आई कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. लाइक वंस द एंड ऑफ लाइफ हैज कम आई कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इट्स बेटर टू नो इट नाउ व्हाट इज द विल ऑफ गॉड बिकॉज आफ्टर दैट वी कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट.
और वो अंत होगा जब परमेश्वर यीशु के सामने हम खड़े रहेंगे तब बहुत ही वो लेट हो चुका होगा लेकिन अभी वो समय है कि उसकी योजना और इच्छा के अनुसार हम चल सके.
We know very less, like we have very limited, our intelligence is very, we don't know much. We can think only about maybe 5 years or maybe not even 5 years. But God who knows the eternity, for eternity past, eternity future, it is best to trust Him because He knows so much ahead of me. So I need to humble down and know that my God knows better than me.
और जो हमारी समझ है बहुत ही सीमित होती है शायद 2 साल 5 साल तक ही वो होती है लेकिन परमेश्वर अनंत काल तक की सारी योजनाओं को आदि में ही मेरे जीवन के बारे में जानता है.
When Jesus was on earth, one thing that came to my mind is he was that story where that place where they were in the boat and the boat was like shaking and going to sink.
और यीशु मसीह जब इस धरती पर था वो शिष्यों के जब वो नाव जो तूफानों में यहाँ वहाँ जो डूबने वाली थी वहाँ
In Luke 8,
और लूका 18 अध्याय
But as they were sailing along, he fell asleep, and a fierce gale of wind descended on the lake, and they began to be swamped and to be in danger.
फिर वह दिन जब वो नाव चल रही थी वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे.
सो कैन इमेजिन द कंडीशन लाइक आई मीन सो मच ऑफ शेकिंग एंड इट मस्ट बी सो मच शेकिंग एंड ऑलमोस्ट लाइक इफ आवर आईज आर ओपन विल सी सो मच सच अ ट्रबल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स लाइक इट्स वेरी ट्रबल एंड स्टिल जीसस कुड स्लीप इन दैट सिचुएशन.
और यहाँ पे हम देखते कि वो पूरी झील आंधी से वो आंधी थी वहाँ पर यहाँ वहाँ नाव हिल रही थी डूबने वाले थे लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस नाव में सो रहा है.
एंड ही इवन आफ्टर ऑल दिस शेकिंग एंड ऑल दिस विंड एंड ऑल जीसस स्टिल स्लीपिंग दैट डिसिपल्स हैड टू वेक हिम अप.
और आंधी में यहाँ वहाँ नाव हिल रही है लेकिन फिर भी यीशु मसीह वहाँ सो रहा है और शिष्यों को उसको उठाना पड़ा.
So I was just thinking this reason for Jesus for being so much at rest is because he was so much secure in his father and he was so much at rest because he knew his his will of God was that he should go somewhere, and he knew God will never allow anything bad to happen to him.
और यीशु मसीह इसलिए वहाँ पर विश्राम था क्योंकि उसने पिता की उस योजना में अपने आप की अपने खुद के उस सुरक्षा को महसूस किया कि मेरा पिता कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ की अनुमति नहीं देगा और उसके आगे मुझे कार्यों को जाकर करना है उसके.
दैट्स द रेस्ट दैट गॉड वॉन्ट्स टू गिव मी ऑलवेज, लाइक वेन एवर आई टेक अ डिसीजन, डू आई रियली हैव इनसाइड माई हार्ट, नॉट आउटसाइड व्हाट पीपल से, बट इनसाइड माई हार्ट डू आई हैव अ रियल रेस्ट इन माई हार्ट, दैट विल शो दैट इट इज़ अ विल ऑफ गॉड.
और एक निर्णय लेने के समय परमेश्वर मुझे एक बहुत ही अद्भुत शांति जब मुझे मिलती है तभी वो एक चिन्ह के रूप में है कि वो परमेश्वर की इच्छा में है.
व्हेन आई टेक अ स्पेशली व्हेन आई टेक अ मेजर डिसीजन आई शुड बी प्रेइंग दैट लॉर्ड इफ इट इज नॉट योर विल लेट इट नॉट बी डन, बिकॉज आई मे सी द एक्सटर्नल एंड आई थिंक इट्स गुड इवन फॉर माई जॉब फॉर मैरिज, बिकॉज वी आर इन द फ्लैश वी ओनली सी मे बी वेरी ब्लेस वी कैन सी, बट गॉड कैन सी द फ्यूचर.
और जब हम महत्वपूर्ण निर्णय जब हम लेते हैं हम इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु अगर ये तेरी ओर से ये नौकरी या शादी तो ही ये तेरी ओर से होने दे प्रभु, क्योंकि तू ही आगे की चीज़ों को जानता है.
सो आई नीड टू बी लिटिल वाइज एंड जस्ट सबमिट टू गॉड्स विल इन माई लाइफ. इट इज़ डिफिकल्ट आई नो, बट इट्स बेस्ट दैट एज मच एज पॉसिबल आई अलाइन माई सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड.
और ये बहुत ही अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो सच में परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में मैं अपने आप को सौंप दूंगा.
देयर इज अ वर्स इन साम्स व्हिच सेज द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी.
और भजन संहिता में वचन है कि जो परमेश्वर के गुप्त स्थानों में वास करता है.
सो इफ आई एम इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, इफ आई एम इन द सेंटर ऑफ गॉड्स विल इन माई लाइफ, whatever storms come, whatever problems come, I can be at rest because I know I am in the will of God completely.
और अगर मैं परमेश्वर के गुप्त स्थानों में वसा हूँ, उसकी इच्छा के मध्य में हूँ, तो कोई भी तूफान क्यों ना आए लेकिन मैं परमेश्वर में सुरक्षित रहूंगा.
I will have no fear in my life if I am in the center of God's will.
अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के मध्य में हूँ कोई डर मेरे जीवन में नहीं रहेगा.
I'll be at rest in all situations.
हर परिस्थिति में मेरे जीवन में एक विश्राम होगा.
At home also when we see there are two like husband and wife are not one, like I mean there are so many difference of opinion, so in that place can I die to my will? My will says I want to have my right here, but can I die there and allow God's will to be done in that place?
और जब पति पत्नी भी होते हैं वहाँ अलग अलग बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी दिशाएं होती है, लेकिन क्या मैं अपनी खुद की इच्छा में मरने के लिए तैयार होता हूँ, अनुमति देता हूँ कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी होने दे.
गॉड्स विल देयर इज आई शुड नॉट फाइट.
और प्रभु की मर्जी ये है कि मैं वहाँ झगड़ा ना करूँ.
आई शुड नॉट आर्ग्यू देयर बट आई नीड टू डाई देयर.
और मैं वहाँ विवाद ना करूँ लेकिन अपने खुद के लिए मैं मरूँ वहाँ पर.
गॉड व्हेन ही स्पीक्स टू मी आई वांट टू रियली लिसन टू हिज वॉइस एंड हम्बल डाउन देयर.
और प्रभु जब मुझसे बातें करे मैं अब नम्र होकर उस बात को सुनना चाहूँगा.
And react in a way that will please him in every situation.
और हर परिस्थिति में ऐसा प्रत्युत्तर दूं जो उसको प्रसन्न कर सके.
Paul says in one place that our ambition is to please God in everything, always.
Paul उस एक जगह पर कहता है कि हमारी इच्छा यह है कि हम हर बात में हर जगह परमेश्वर को भाते रहे.
So I really want to have this ambition in my life. Maybe I have failed many times, but I still believe that. I set my goal as to my ambition to do the will of God, to be pleasing to him in everything.
और कई बार मैं उसमें नीचे गिरा लेकिन परमेश्वर मेरी यही इच्छा है कि मैं मेरे जीवन का लक्ष्य ये रखूं कि मैं हर चीज में उसे प्रसन्न करना चाहता हूं.
As brother spoke that I need to always pray, Lord, when I do something, Lord, is it pleasing to you? Lord, I want to do only the things that are pleasing to you.
और हर चीज जब मैं करता हूं मैं ये प्रार्थना करूं कि प्रभु क्या ये चीज तुझे प्रसन्न करने वाली है या नहीं.
I should not be influenced by the people of the world because they have a worldly wisdom. They don't have the wisdom of God. So I should not be influenced by what people say and take decisions, but I should be influenced by the word of God.
और दुनिया के लोग जो है उनकी बुद्धिमानी जो संसार के अनुसार उससे प्रभावित होकर मैं निर्णय न लूं, लेकिन परमेश्वर उसके वचन से प्रभावित होकर मैं सारे निर्णय को लूं.
They have very short, they don't see much. No one in the world can see much, but God can see everything. So it's best to, even if I take the opinion of man, anyone, but Lord, your will is the best for me.
दुनिया और दुनिया के लोग जो है वो ज्यादा आगे का नहीं जानते, उन्हें वो उतना ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर उसकी योजना उसकी इच्छा मेरे जीवन के लिए उत्तम है.
I really believe that God will do this work in me, that I will be able to gradually more and more to do the will of God in every situation that comes in my life.
Aur Parmeshwar mujhe anugrah de ki aur dheere dheere karke Parmeshwar ko main har cheez ke andar uski ichcha ko karte jaun.
And we need the power of the Holy Spirit to do the will of God.
और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है ताकि उसकी इच्छा को पूरी कर सके.
As Jesus, when he lived on earth, he needed the power of the Holy Spirit to do God's will, because our flesh is always wanting to do our own will. So we need some powers that are more than what our strength, more than our strength. The Holy Spirit has to come in our hearts and give us the strength to do his will.
और हम जब शरीर में होते तब इस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह के जैसे जैसे उसने हर एक बातों के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ को अनुभव करके सब कुछ किया, वही हमें बल देगा.
आई बिलीव दैट गॉड विल डू दिस इन माई लाइफ.
और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये मेरे जीवन में करेगा.
लास्ट वीक आई वॉज थिंकिंग अबाउट मेरी एंड मार्था.
और पिछले सप्ताह में मरियम और मार्था के बारे में सोच रहा था.
एंड वी नो दैट व्हेन द डिसिपल्स केम टू देयर हाउस.
और जब हम जानते हैं कि शिष्य जब उनके घर पर आए,
मेरी वाज सिटिंग एट जीसस फीट एंड लिसनिंग टू जीसस.
और मरियम जो थी वो यीशु के चरणों पर बैठकर उसके वचन को सुन रही थी.
एंड मार्था वाज वेरी बिजी डूइंग मेनी थिंग्स इन द हाउस.
और मार्था जो घर के अंदर सारे कामों को करने में बहुत व्यस्त थी.
सो वी नो दैट व्हेन द डिसिपल्स केम, मार्था वाज द फर्स्ट पर्सन टू वेलकम देम इन द हाउस.
और जब शिष्य आए होंगे घर में तो मार्था वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने उसका आमंत्रण किया घर में.
एंड एवरीथिंग ही डिड शी डिड वाज वेरी गुड, बिकॉज वी हैड टू वेलकम पीपल एंड एवरीथिंग शी इज डूइंग इज वेरी गुड.
और मार्था ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, उसने उसका आमंत्रण किया, बहुत अच्छी बात थी.
And she is cooking in the kitchen, doing all the making all the dishes for the disciples. So much hard work she is doing.
और बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रही है, लोगों वो शिष्यों के लिए खाना बना रही है रसोई घर के अंदर.
But her heart was not at rest.
लेकिन उसका जो दिल जो हृदय है वो विश्राम में नहीं था.
She was so much agitated in the heart.
और बहुत ही वो अपने अंदर बहुत ही एक विश्राम में वो नहीं थी.
Because she was doing all the work, she was so much there is so much less time and all the preparations she is doing and she wants to make everything very good.
और बहुत ही कम समय उसके पास है और बहुत सारी चीजें उसको उस समय के अंदर करना है, बहुत ही व्यस्त वो है.
And upon that her sister is not helping her.
और उसके ऊपर उसकी बहन उसकी सहायता नहीं कर
so
रही है.
So that's the main reason why she was so much agitated.
और उसका यही कारण होगा कि शायद वो बहुत ही अंदर से क्रोधित शायद वो होगी.
So that was always in her mind that her sister is just a lazy sister sitting at Jesus' feet. She doesn't care for anything. She just wants to show that. And I am doing all the work alone.
और यही विचार उसके मन में तभी काम करते हुए आ रहा था कि मेरी बहन जिसको मुझे सहायता करनी चाहिए वही यीशु मसीह के चरणों में बैठी हूँ, मैं ही अकेले सब कुछ कर रही हूँ.
And that's why she, when she couldn't bear it anymore, she came and spoke to Jesus.
और जब उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया वो यीशु के सामने आकर वो बोल देती है.
That you don't care that I am working alone.
तुझे कोई चिंता नहीं कि मैं अकेले काम कर रही हूँ.
So I was thinking that many times we feel that I have to do everything, I have to do something and then only it will work.
और कई बार हम ऐसे ही सोचते कि मुझे ही सारी चीजों को करना है तभी चीजें आगे बढ़ेगी.
But I have to have that habit of listening to God.
लेकिन मुझ में ये एक हैबिट होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर को सुनना है.
So if I keep listening to God, I will not be so much depressed.
और अगर मैं निरंतर परमेश्वर को सुनता रहूंगा तो मैं निराश नहीं होऊंगा.
The main reason why we feel depressed is because we don't listen to God.
और एक मुख्य कारण कि हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं सुनते हैं.
I believe that God wants to encourage all of us to listen to Him and do everything.
और परमेश्वर को प्रोत्साहित करना चाहता है कि हम उससे सुनकर ही सारी चीजों को करें.
I believe the sisters especially they are very busy in the work and they can tend to be very depressed because they are doing all the work and sometimes we don't have time to listen to God.
और खासकर बहनें जब वो घर के अंदर सारे कार्यों को करती है शायद वो बहुत व्यस्त हो सकती है, शायद उनके पास वो समय नहीं होगा परमेश्वर को सुनने के लिए.
So in that midst of that tension also if we can just say God do you have something to speak to me.
और उस टेंशन उस व्यस्तता के अंदर भी हम कर सकते हैं कि प्रभु क्या कुछ है जो मुझे सुनना है तेरी तरफ से.
So when God speaks to us it brings such a peace in our hearts.
और जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम चीजों को बड़े शांति के साथ कर सकते हैं.
Then that agitation will go away.
और जो अंदर से क्रोध जो गुस्सा जो है वो चले जाएगा.
And God will surely help us.
और परमेश्वर सच में हमारी सहायता करेगा.
And one verse which always helps me is that verse in Romans 12 which says that वी हैव टू सबमिट आवर बॉडीज टू गॉड.
और एक वचन जो मुझे हमेशा सहायता करता है रोमियो 12 के अंदर से कि हमें हमेशा हमारे शरीरों को परमेश्वर को समर्पित करना है.
इट इज नॉट वेरी इजी टू सबमिट आवर बॉडीज ऑल द टाइम.
और हमेशा सदा सर्वदा हम शरीर को प्रभु को नहीं समर्पित कर पाते.
बिकॉज़ आवर बॉडीज वी हैव अ फ्लैश व्हिच वांट्स टू फुलफिल इट्स ओन लस्ट.
क्योंकि हमारा शरीर जो है वो खुद की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है.
आवर आईज आवर टंग एवरीथिंग वांट्स टू डू व्हाट इज नॉट प्लीजिंग टू गॉड.
और हमारी आंखें हमारी जीभ वो सारी चीजें करना चाहती जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती.
सो देयर इज अ फाइट फॉर अस वेयर वी इफ वी वांट टू प्लीज गॉड. There is a fight for us.
और एक संघर्ष है जो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में देखते हैं.
It is important for us to totally depend on God in this.
और हम परमेश्वर पर पूरी तरह से इस मामले में निर्भर रहे.
Praise God. I thank God for whatever I have heard today.
प्रभु को धन्यवाद जो आज मैंने सुना उसके लिए.
Truly, it's a really a wonderful subject or a topic for me to. When it comes to will of God.
और ये बहुत ही विषय बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत विषय है जो जब परमेश्वर की इच्छा के बारे में है.
We heard beautifully how what is exactly of will of God and what is the meaning of it.
और हमने अद्भुत रीति से सोचा कि परमेश्वर की योजना क्या है और उसका क्या अर्थ होता है.
What I really understand and what I take it to my mind is we have to wait patiently for the will of God.
और जो मैं समझ रखता हूँ परमेश्वर की इच्छा के लिए कि वो है हमें बहुत ही धीरज से उसकी इच्छा के लिए बाट जोना है.
Because in Proverbs also it says you know the hasty moves are done by fools, something like that.
और नीति वचन में कहीं ऐसा लिखा है कि बहुत ही जल्दबाजी से जो करते वो मूर्ख होते हैं.
A wise man is always patient.
लेकिन जो बुद्धिमान जो होता है वो बहुत ही धीरज से कार्य करता है.
We have to be patient so that you know so that we don't do anything hastily.
और हमें हमेशा धीरज को रखना है ताकि हम जल्दबाजी से सारी चीजों को ना करें.
Secondly, which I understood is we shouldn't be getting disappointed whenever we face failures.
और ये दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि जब कभी हम जब हम असफल होते तब हम निराश ना हो.
What happens is we being patient, but then after some time we lose hope and then we get disappointed.
और कई बार हम धीरज रखते हैं लेकिन उसके बाद हम आशा खो बैठते हैं और उसके बाद हम निराश हो जाते हैं.
We get frustrated and then we get angry on God.
और हम निराश हो जाते हैं और हम बहुत ही क्रोधित परमेश्वर पर हो जाते हैं.
Something which I always feel and you know I always come across.
और जैसे मेरे जीवन में हमेशा इस चीज को मैं सामना करता हूँ.
If there is for example a financial situation and I'm not able to do it and I'm facing regular failures in that.
और जैसे कोई आर्थिक समस्या और वो बार बार उस क्षेत्र के अंदर मैं बार बार असफल होता हूँ.
I'll wait.
और जब मैं धीरज धरूंगा मैं राह देखूंगा
and then I'll start praying why Lord it is not happening.
और तब मैं प्रार्थना करना शुरुआत करता हूँ प्रभु क्यों नहीं हो रहा है.
As Biju brothers said we have to tame our body because our body makes you feel like that and makes you think like that.
और हमारे शरीर को जैसे हमें अनुशासित करना है क्योंकि हमारा शरीर ही हमें ये अंदर से लाता है कि ये चीजों को हम बोले और करें.
We live in a world where everything nowadays is very instant.
और हम ऐसे दुनिया में संसार में रहते हैं जहाँ हर एक चीजें बहुत ही जल्दी हो जाती
है. And we also want everything instantly.
और हम भी हर एक चीजों को बहुत जल्दी चाहते हैं.
But God has some other ways.
लेकिन परमेश्वर की योजना उसके तरीके कुछ अलग है.
He always want it, you know, like slow and steady, but forever.
लेकिन परमेश्वर बहुत ही धीरे कार्य करता है स्थिरता से सदा के लिए वो कार्य करता है.
I have to make myself you know disciplined in such a manner that if I'm failing a failure if I'm facing a failure that means it is not a will of God and I have to wait patiently.
और अगर मुझे अपने आप को अनुशासित करना ये करते हुए कि अगर मैं किसी क्षेत्र में असफल हूँ तो मुझे धीरज से परमेश्वर के लिए बाट जोना है.
Many a times me and my wife whenever we discuss anything whenever we plan out something and it doesn't go so with this one thing we always says whatever the will of God is let it happen.
और मेरी पत्नी कभी भी कोई योजना बनाती है उस प्रकार जब नहीं बनता है तो हम ये कहते कि शायद परमेश्वर की योजना नहीं थी उसकी मर्जी पूरी हो.
I have plenty of testimonies wherein I have failed for the first time but when it happened for the best I would say.
और कई सारी ऐसी गवाहियां है कि पहली बार में असफल रहा लेकिन दूसरी बार जब वो हुआ तो बहुत ही उत्तम वो हुआ है.
Let us strive to be have that patience level in us and you know always never lose hope in God.
और हमारे जीवन में वो धीरज को हम रखें और कभी भी वो आशा को जो परमेश्वर पर है हम खोए नहीं.
Jeremiah 29:11 was something which I got the word when I was baptized.
और जब मेरा बपतिस्मा हुआ था यर्मिया 29:11 इस वचन को जब मैंने सुना था.
And I think from start of this year I have got this word like thrice or four times right now.
Aur is saal mein shuruaat se 3 se 4 baar ye vachan mujhe mila.
I would take it to my heart that Lord is really with us and is looking after us.
Aur main is mere hriday mein lunga ki parmeshwar hamare saath mein hai aur hamari aur wo dekh raha hai.
And he has planned something good for us.
Aur usne kuch adbhut mere liye yojana banayi
hai. The best I would say, I'm sorry.
Uttam usne yojana banayi hai.
I want to be patient enough to you know get those things.
Aur main dheeraj se usne jo yojana banayi hai uske liye main baat jona chahunga.
Praise God.
Prabhu ki stuti ho.
I thank God for the words he spoke to me.
Aur main dhanyawad karti hu prabhu ka jo vachan se aaj prabhu ne mujhse baatein ki.
His will for my life and his plan for my life, I thank for that.
और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन के प्रति उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ.
Something these days God was encouraging me that he is on the throne.
और इन दिनों में जो प्रोत्साहन मुझे मिला कि परमेश्वर सिंहासन के ऊपर है.
He is controlling everything in my life.
और हर एक चीज को प्रभु मेरे जीवन में नियंत्रित कर रहा है.
So I was thinking if I am really believing that how much careful I should be to do things and to say something to help somebody all the time, how much I should be careful.
और अगर परमेश्वर सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखे हो तो कितना अधिक मुझे ध्यान रखना है कि कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे मैं औरों के साथ व्यवहार कर रही हूँ.
Because why? Because I should listen to the voice of the Holy Spirit to do everything.
क्योंकि हर एक चीज करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है.
Because he is controlling, I have to do everything in his time.
और हर एक चीज़ वो नियंत्रण कर रहा है, इसलिए मुझे उसके समय के अनुसार सारी चीजें करनी है.
It's not my time.
और मेरे समय में नहीं.
So that is a good example that we can see in Jesus' life. I was reading in these days John Gospel of John.
और हम यीशु के जीवन से ये बात देख सकते हैं उदाहरण के तौर में यूहन्ना 11 अध्याय में.
John 2.
यूहन्ना 2 अध्याय.
When they were in the in Cana, the wedding at Cana.
और जब यीशु जब काना के लग्न में था.
2:4.
चार वचन.
Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come."
यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया है.
Jesus was so careful to listen to the voice of the Spirit and to do in God's time.
और यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए इतना ध्यान रखता था और चीजें परमेश्वर के समय में ताकि वो कर सके.
In message Bible is very nicely written. Jesus said, "Is that any of our business, mother, yours or mine? This is not my time. Don't push me."
और मैसेज अनुवाद में लिखा है कि क्या माता ये मेरा और तुम्हारा व्यवसाय नहीं है, मुझे तू धक्का मत दे इस कार्य को करने के लिए.
जीसस लिसनिंग ऑल द टाइम इन डू एवरीथिंग इन हिज फादर्स टाइम.
और यीशु मसीह हमेशा नित्य परमेश्वर को सुनता है ताकि पिता के समय में वो सारी चीजें कर सके.
जॉन चैप्टर 7:6
यूहन्ना 7 अध्याय 6 वचन में लिखा है.
There also is, we can read, this is not my time.
वहाँ पे भी यीशु कहता है कि मेरा समय अब तक नहीं आया.
Because they were going for the feast.
और वहाँ पे वो पर्व के लिए जा रहे थे.
Jesus sent all his disciples for that.
और यीशु अपने सारे शिष्यों को वहाँ भेजता है.
But Jesus telling to them that my time has not come, but your time is always ready, so you go.
और यीशु ने कहा कि मेरा समय अब तक नहीं है, लेकिन आप हमेशा तैयार है, आप जाइए आगे.
Again in verse 8 he is telling the same thing. It is not the right time for me.
और 8 वचन में और एक बार यीशु कहता है कि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ.
So all his disciples went, but after some time he also went.
सारे शिष्य पहले चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यीशु भी जाता है.
That was his time, so he went in his time.
और वो यीशु का समय था और वो समय पर यीशु गया.
I was thinking that how much I should be very careful to listen to the voice of God, then to do everything in his time.
और कितना अधिक मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं और उसी समय में वो कार्य को मैं कर सकूं.
And the thing in verse 30.
और 30 वचन में
in a message, it is like this: they were looking for a way to arrest him, but not a hand was laid on him because it was not yet God's time.
और वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने उसे पकड़ना चाहा पर किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था.
So Jesus was in the in that feast. He was talking to them. Then when they heard all what he was speaking, they were really angry at him and they wanted to arrest him.
और उस समय यीशु जो बात बोल रहा था वो बातें सुनकर वो लोग उसे वहाँ पे पकड़ना चाहते थे.
But not a hand was laid on him.
लेकिन वहाँ पे किसी का भी हाथ उसको न पकड़ पाया.
Because it was not at God's time.
क्योंकि तब वो परमेश्वर का समय नहीं था.
So I was thinking how much I should be secure in God's time.
और ये मैं सोच रहे थे कि कितना अधिक मुझे परमेश्वर के समय में सुरक्षा महसूस करनी है.
Because without His permission, nothing will happen to me.
क्योंकि उसकी अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा.
Whatever it is, sickness or death or whatever happens, everything, good or bad, everything is according to His time. He is controlling all that.
और चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो भला या बुरा, हर चीजें वो परमेश्वर के समय के अनुसार होगी और वो सब नियंत्रण कर रहा है.
Because He is controlling, and so I can be at rest in all the time.
और वो सारी चीजों को नियंत्रण कर रहा है और इससे मेरे जीवन में एक शांति, एक विश्राम आता है.
I don't need to worry about anything, my future or anything, because He is controlling and His time, everything He will do.
और मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी क्योंकि वो नियंत्रण कर रहा है और उसके समय में सारी चीजें वो करेगा.
So I am really comforted by this.
और इसके द्वारा मुझे बहुत ही विश्राम मिला.
Praise God and glory to Almighty and Sovereign Lord.
प्रभु की स्तुति हो जो आज बातें हमने सीखी और सुनी.
I'll take 3 minutes, brother Abu.
और मैं 3 minutes लूँगा.
Yeah, so just 4 days ago.
4 days पहले.
A small incident happened. Just throw some a light on some teaching that I learned from the Bible.
और कुछ ऐसी घटनाएं हो जिससे मैंने कुछ वचन के भाग को सीखा.
सो 4 days ago माय फादर रोट अ विल.
और 4 days पहले मेरे पिता ने एक जो विल को लिखा.
एंड माय नेम वाज नॉट देयर ऑन द विल.
और जो उन्होंने जो चीज़ें जो संपत्ति थी उसको बंटवारा कर रहे थे उसमें मेरा नाम नहीं था.
सो ऑल वाज पास्ड ऑन टू माय यंगर ब्रदर.
और सारी जो मेरे छोटे भाई को वो सारा सब कुछ दे दिया इस
And
तरह से.
He came home to tell me this.
और वो मेरा भाई मेरे घर पर आया इस चीज को बताने के लिए.
And he told me, brother,
उसने कहा भाई,
dad has written a will.
और भाई मेरे हमारे पिता ने संपत्ति का बंटवारा किया है.
And the copy of the will is in my hand.
और उसकी जो कॉपी नकल मेरे पास मेरे हाथों में है.
And the papers of the documents are also with me.
और सारे जो डॉक्यूमेंट मेरे साथ है.
So I have, you know, he has passed on all his inheritance.
और उसकी सारी जो संपत्ति जो था वो सब कुछ उन्होंने उसको दे दिया.
So I was, at that moment of time, I was very happy and I shook hand with him.
और वो समय मैं खुश हुआ मैंने उसका हाथ उसको मिलाया.
And I said, God bless you.
मैंने कहा प्रभु तुझे आशीष दे.
कि God, you know, he, you are the one who took care of the family and this is the right thing that father has done.
और तूने ही घर की चिंता की और ये पिता ने बहुत अच्छा काम किया है.
But within my heart, when I slept that particular night,
और जब उस रात को मैं सोया,
I was little in grief.
और मैं एक दुख में था वो रात को.
And I didn't know what kind of grief.
Grief. अच्छा, एक दुख था और पता नहीं किस चीज का वो दुख था.
But then it took me while I was sleep, while I in my bed.
और जब मैं सो रहा था तभी वो चीज थी.
It took me back to some 20 years ago.
और 20 साल पहले की घटना तब मुझे स्मरण आई.
And I was remembering with this earthly father ka inheritance that I am supposed to have.
और जब मैं इस बात को सोच रहा था कि जो संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए मेरे पिता के बारे में उस चीज के बारे में.
So what is that inheritance? It is what is inheritance?
और वो जो संपत्ति है वो क्या है?
So I said inheritance means with inheritance I will get all the habits of the family.
मतलब कुछ जो जो प्राप्त करना वो संपत्ति वो है कि वो जो सारी चीज़ें जो उनके पास है वो मुझे मिलती हैं.
In terms of genealogy, if the in the family has a disease, that will be passed on to me as well.
और अगर मेरे घराने के अंदर किसी को जो रोग भी है तो वो भी मुझ पर आ जाता है.
But in this case, if God has given me an inheritance, the Father in heaven has given me inheritance through His Son Christ.
लेकिन यहाँ पर पिता ने मुझे उसके पुत्र के द्वारा वो निज धन मुझे दिया है.
And which I was not able to understand last 20 years.
और 20 साल पहले मैं उसे नहीं समझ पा रहा था.
And so this small incident.
और एक छोटी सी घटना.
Made me realize.
और उससे मुझे एहसास हुआ.
What inheritance means.
और ये जो 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 निज जो भाग जो है उसका क्या मतलब होता है.
It is written in Ephesians chapter 1:11-17. We may not read it. We are running short of time. But maybe sometime next time when I get an opportunity, I'll definitely share this further.
और अभी समय नहीं है इसलिए हम नहीं देखेंगे, लेकिन आगे अगर समय मिला तो जरूर हम इस चीज को देखेंगे.
Yeah, thanks.
धन्यवाद.